وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دکھائے اور ان سے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں چل سکتا, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. دیکھیے شیطان کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, تو اگر ہم گناہ بھی کریں اور ساتھ کے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, ہائے بڑا ڈر لگتا ہے, تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ کام کے وقت پہ کام نہ کریں اور زبان سے کہتے اللہ سے ڈر لگتا ہے تو یہ ایک دھوکا ہے. اللہ کا ڈر بندے کے پاؤں پکڑ لیتا ہے, زبان پکڑی جاتی ہے, نگاہیں جھک جاتی ہیں, کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے بندہ, زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے کھینچتا ہے کہ خبردار غلط نہ بولنا. تو دھوکا ہے یہ صرف انسان کا کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا. کئی لوگوں کو دین کی طرف آتا دیکھ کر لوگ آج بھی یہی جملہ بولتے ہیں, یہ خبتی ہو گئی, ان کو جوش چڑھ گیا, یہ آج سب کو ایک ہی بھوت سوار ہے, قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا, دیکھنا چند دن میں ان کا سب ختم ہو جائے گا. کہا نہیں, حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. غزوہ بدر میں جو کافر مارے گئے ان کی موت کا منظر ہے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کیا. عذاب قبر کی طرف اشارہ ان آیات میں, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے. ایک دم یہاں فرعون کا ذکر کیوں آیا؟ مماثلت ہے. بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا, پانی میں گئے تو فرعون بھی تو پانی میں ڈوبا تھا. تو کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک طرح کا جوڑ کے سامنے رکھ دیا. اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے, یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. ہائی لائٹ کریں گے آگے, تو اس سے بھی واضح آیت آئے گی انشاءاللہ. لیکن جہاں دیکھیے کیا وہی بات نہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی؟ نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور حقیقت ہے ہم جب تک خود نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. آپ کہہ لیجئے کہ جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. آپ چاہتی ہیں مسلمانوں کے حالات بدلیں تو اپنی حالت ہمیں بدلنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار ہی نہیں. نوٹ کیجئے, اللہ سے لوگوں کو جانور کہہ رہے ہیں, خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں, ذرا خدا کا خوف نہیں رکھتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے خواص باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ پھینک دو. ٹھکے چھپے نہیں معاہدے توڑ سکتے. آپ دیکھیے اسلام معاہدوں کی, اگریمنٹس کی, کمٹمنٹس کی کتنی اہمیت لاتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں عمل ہے. اگر کسی کام کی کمٹمنٹ کی ہے تو نبھانا ہوگا, توڑنی ہے چھوڑنی ہے تو اس کے لیے وقت طریقہ ہوگا, ڈسپلن ہوگا. یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے آپ اس فیصلے کو کر کے سنا کے پیچھے ہو جائیں. پر میں اللہ سے خائنوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی خیانت قرار پائے گی کسی کام کی ذمہ داری لینا اور اس کو بغیر کسی نوٹس کے چھوڑ دینا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو. دیکھیے یہ ہے وہ آئے جو مسلمانوں کو سکھاتی ہے, تم بھی ہتھیار لو بناؤ, جب سارے چھوڑ دیں گے تم بھی چھوڑ دو. آج لوگ اگر یہ کہیں کہ مسلمان ہتھیار نہ رکھیں کیونکہ مسلمان پیسفل ہے تو آپ بھی چھوڑ دیں ہم بھی چھوڑ دیتے. आप सारे दुनिया के वेपन्स को डंप कर दें तो हम अपने सबसे पहले करने को तैयार हैं। आप अपने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, फुलाम बॉम्ब सब खत्म कीजिए, हम आपसे पहले करने को तैयार हैं। दुनिया को पीसफुल लैंड बना, ये होगा नहीं कभी, ये एक ड्रीम लैंड है जो कभी आज तक तो ना हुआ, आगे कहाँ होगा। आपके बच्चों को यकीन हो जाए कि माँ बाप उनको कुछ नहीं कहेंगे तो वही सर पे चढ़ेंगे, ये तो डंडे का जोर होता है जो लोगों को ठीक रखता है। तो इस्लाम क्या चाहता है, असलहे की नुमाइश करो, उसका इस्तेमाल ना करो। यहां ये जो आप परेड देखते हैं, या जो 23 अगस्त को, 23 मार्च को होता है, 23 मार्च को या 14 अगस्त को, तो उसको देखकर एकदम दिल में रोब आता है ना। तो इस्लाम बुरा नहीं कहता इसको, दुश्मनों को दिखाओ हमारे पास बॉम्ब है, नो प्रॉब्लम है, वी हैव, वी आर एटॉमिक एनर्जी, यस व्हाई, ताकि वो दूर रहे। इस्लाम हथियार इसलिए बनाता है कि लोग जंग ना करें, काफिर हथियार इसलिए बनाता है कि जंग करें और फिर अपने हथियारों को बेचने के लिए लड़ाता है। क्या अब हमारे हथियार पुराने हो रहे हैं, इनको पकड़ो इधर से उधर मरवाओ ताकि हमारे नए हथियार बिके। ये मदीना में भी हो रहा था, ये आज भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम तैयारी करके रखो ताकि इसके जरिए से अल्लाह और उसके दुश्मनों को और इन दूसरे दुश्मनों को खौफ सदा करो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी ही तरफ पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ कोई भी जुल्म न किया जाएगा। वइन जनहु लिस्सल्मि फजनहलहा, और ऐ नबी अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी इनकी तरफ इमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो आपके लिए अल्लाह काफी है, यानी मुसलमान समझदार है। देखिए दुश्मनों तक को मौका दिया जा रहा है, क्या पता चला कि किसी दीनदार का साथ देने के लिए थोड़ी सी तहकीक कर लो, उनका मिशन समझ आ जाए, काम शुरू कर दो। अब अंदर से क्या है, बाहर क्या है, उनके मोटिव्स क्या है, वो किसको प्रमोट करें, इसकी ज्यादा फिक्र ना करो। अगर वो खयानत करेंगे उनको गुनाह होगा, आपको नहीं होगा। वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे से जोड़ दिए। तुम रुए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल जोड़ नहीं सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ए नबी तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरों अहलो ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफी। हाईलाइट कीजिए इस आयत को, सारी मोहब्बतों का सिरा अल्लाह के हाथ में। आप किसी के दिल में मोहब्बत डाल ही नहीं सकते जब तक वो मोहब्बत डालने वाला ना डाले। असल नाम अल्लाह का हल वदूद, हम सब बात करें अपने ऊपर। आप देखिए कि उल्फतों का मरकज जब अल्लाह होगा ना तो खुद में मोहब्बत डलेगी। जब भी कभी अल्लाह ताला से लोगों को जोड़ेंगे तो मोहब्बत होगी। सवाल पैदा होता है कि एक गिरोह के लोगों के दिलों में मोहब्बत कैसे डले। मिसाल है घर में शोहर बीवी एक को दूसरे से मोहब्बत नहीं महसूस होती, क्या किया जाए? क्या को वजीफे पढ़े जाए या वदूद की तस्बीहें पढ़ी जाए? वजीफों से वो काम नहीं होता जो कुछ कामों के करने से होता है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं ना कि दूसरे आपसे मोहब्बत करें तो आप खुद अल्लाह से मोहब्बत करें। ये अल्लाह का वादा है, जब आप अल्लाह से प्यार करते हैं अल्लाह ताला बंदों के दिल में आपकी मोहब्बत डालता है। फिर आप कुरान से मोहब्बत करें, रसूल से मोहब्बत करें, ये वो मैग्नेट है। अल्लाह, रसूल और इस्लाम और कुरान, इनसे मोहब्बत करना वो मैग्नेट है जो टीम को जोड़े रखता है। मोमिन तोला जाता है, गिना नहीं जाता। आज हम तकरीबन 1.25 लाख बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन अगर आज सहाबा को लाके पेश किया जाए तो 2-4 सहाबा का ईमान हमसे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सहाबा आपस में जुड़े हुए थे। ईमान की वजह से मोहब्बत बढ़ती है, लाइक माइंडेड होने से मोहब्बत बढ़ती है, सेम कॉज होने से मोहब्बत बढ़ती है। और मोहब्बत और उल्फत के कातिल क्या है? जुबान। इसको काट दें, शिकवे छोड़ दें, गिले छोड़ दें, छोटी छोटी बातों को इशू बनाना छोड़ दें। आप किसी की 10 बातें देखें उसको ओवरलुक कर दें, दुआएं दें उसको। जहां किसी साथी की कमी देखे वह उसको दुआ दें। फिर आप देखिए आपस में मोहब्बत बढ़ती है सलाम करने से, तोहफे देने से, कुशादा पेशानी से मिलने से, मुस्कुराने से। कहीं फील होता है ना दूसरे साथी के साथ कोई खटपट है, किसी को मुझसे या मुझे से कोई छोटा 10, 5, 20 का गिफ्ट दे दें। आप देखिएगा मोहब्बत हाथ तहबो, ये सब चीजें, दावत दे दें, खाना ले आए, खाना पेश कर दें, बच्चों को पकड़ लें, कुछ ले लें, दे लें। क्योंकि जिनको अल्लाह का दीन प्यारा होता है वो हकीकत में उल्फतों को कायम रखते हैं। उल्फत निकल जाए ना तो वो ऐसी डोरी है जो उतर गई तो बाकी मोती जो है वो बिखर जाएंगे। कितनी खूबसूरत तस्बीह क्यों ना हो, बीच में से मोती निकाल लें, सब पाँव में आ जाते हैं लोगों के। फिर इसी तरह लोगों को अच्छे मशवरे दें और मोहब्बतें खत्म होती हैं गीबतों से, तानों से, इल्जाम से। इन सब चीजों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह मोहब्बत आएगी। और इन सारी चीजों की आज उम्मत मुस्लिमा को बड़ी जरूरत है। मैं कहती हूँ अल्लाह इस वक्त वो दाई दीन उठा जो मोहब्बतों का पैगाम आम करें, काटने वाले, तोड़ने वाले, एक की लेग पुलिंग दूसरे के साथ करने वाले, हम थक गए उनसे। उन्होंने उम्मत को आज कितने टुकड़ों में बांट दिया। हक पे रहते हुए मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत फातह आलम। इस मोहब्बत से तो आप देखिए क्या कुछ जुड़ता है। और याद रखिए ये काम औरत करेगी, एक माँ की मोहब्बत में घर जुड़ा रहता है। 6 बच्चे भी है ना, एक माँ के सीन साथ जुड़ के घर बनेंगे। माँ कटती है, माँ निकलती है, माँ फौत होती है, घर बिखर जाता है। आज भी ये काम औरत ही करेगी, क्योंकि जो नरमी और जो मामला फहमी औरत की आवाज और जुबान में बात में हो सकती है, जो दिलों को मोले, वो बाज दफा मर्दों में नहीं होती। और सारे ऐसे नहीं, और सारी औरतें मोहब्बतों वाली नहीं, हर तरह के लोग हैं। दुआ कीजिए कि जैसे सहाबा के दिल जुड़े हुए थे, अल्लाह ताला हमारे भी जोड़ दे। मकसद पे नजर रखे, काम करना है आपने, काम छोड़ना नहीं, किसी एक बंदे को काटना नहीं है। मैंने कट जाना है, मैंने पीछे हो जाना है, लेकिन किसी दूसरे को नहीं ले जाना। फिर देखिए इंशाल्लाह मुसलमान उम्मत कैसे फख्र करती है अपने ऊपर। ए नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 लोग सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर गालिब होंगे। एक कितने के ऊपर भारी है? 20 दो पे 100। जी रेशो देखिएगा, यानी जब ईमान पुख्ता होता है ना, तो एक मुसलमान के मुकाबले में अगर 100 काफिर भी आ जाएं, 20 और 200 का मुकाबला करें तो 10% है। एक मुसलमान के मुकाबले में 10 काफिर आ जाएं तो मुसलमान गालिब आएगा, ये अल्लाह का फैसला है। और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीने हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वैसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसको मालूम है कि भी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी हो तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे। पहले 1/10 का रेशो था, अब 1/2 का हो गया। क्या पता चला कि दीन के कामों में अल्लाह की मदद ईमान के मुताबिक आती है। सहाबा के ईमान बड़े पुख्ता थे, तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। 313 के मुकाबले में 1000 भी नाकाम हो गए। आज किस चीज की जरूरत है? आज ईमान कम है, आज ज्यादा लोगों की जरूरत है। ऐसे ही है कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं, 2 लोग भी उठा के बड़ा टेबल उठा लेंगे, और अगर लोग वीक होंगे तो 10 लोग लगेंगे तो एक टेबल एक जगह से दूसरी जगह पे होगा। तो दीन को फैलाने के लिए जहां आपस में जुड़ना लाजिम है, मुसलमान मुसलमान से जुड़े, टीम वर्क करे, इसी तरह से दूसरी बात जहां ये पता चल गई कि ईमान बढ़ाने की जरूरत है। और याद रखिए, जब आगे से तालीम का सिलसिला रुक जाता है ना, तो फिर इंसान दोबारा उसी जाहिलियत में आ जाता है जहां से चला होता है। तो टीम के अंदर जिनको काम दिया जाए, मैनेजमेंट के काम दिए जाए, उनको फिर तालीम भी लेनी चाहिए। बाज दफा कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कुरान पढ़ते थे तो बहुत मजा आता था, अब ऑफिस में बैठते हैं हर वक्त मुकदमे फैसले, ये है उसका दाखिला उसका ये, अब हमें ऐसे लगता है हमें कुछ ईमान नहीं मिल रहा। और इट्स ट्रू, ईमान मिलता है कब? जब आप खुद इल्म के पानी से रहते हैं। इसलिए हर शख्स हमेशा तालिब इल्म रहता है, चाहे वो 10 साल पढ़ चुका हो, फिर उसको पानी मिलता रहता है तो उसको अपनी खराबियां भी दिखती हैं। और हकीकत है कि दीन की गाड़ी मुख्तलिफ लोगों से मिलती है, कोई स्टेयरिंग है, कोई ब्रेक है, कोई इंजन है, व्हील्स बनेंगे, और ये सब अपना अपना काम करें। और दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कोई एक नट और एक बोल्ट ही बना ले, एक तार बना ले, बस मुझे दीन की गाड़ी में डाल दे। लेकिन ये बात हकीकत है कि दीन का काम तन्हा नहीं होता, एक अकेला 2/11। तो फरमाया अगर तुम्हारा ईमान अब कम हो गया तो 200 पर 1000 और 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे। और वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सबर करते हैं।